بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین. آج انشاءاللہ ہم سورہ یوسف کی تکمیل کریں گے, اس کے بعد سورہ رعد اور سورہ ابراہیم انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے. سورہ یوسف اس کا ہم مطالعہ کر رہے تھے, 7 رکوع ہم نے اس کے پڑھے تھے. یہ قرآن مجید میں اس لحاظ سے ایک منفرد سورت ہے کہ یہ تقریباً اول تا آخر ایک نبی کی رودات پر مشتمل ہے. اس کا جو آخری حصہ ہے کچھ آیات ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے. اس کی ایک اور مثال جو ہے وہ 29 پارے میں نسبتاً چھوٹی سورت ہے, سورہ نوح. وہ تقریباً ساری کی ساری سیدنا نوح علیہ السلام کے قصے پر مبنی ہے. پھر سورہ طٰہٰ ہے, اس میں بھی تقریباً زیادہ بڑا حصہ سورہ طٰہٰ کا سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کی سرگزشت پر مبنی. اب جو ہم نے پڑھا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا, اپنے والد صاحب سے ذکر کیا, تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اپنے بھائیوں سے اس کا ذکر نہ کرنا ورنہ تمہارے خلاف جو ہے وہ مکر کریں گے. پھر بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا, وہاں سے کچھ قافلے والے ان کو لے گئے, پھر مصر کے بازار میں وہ بکے اور عزیز مصر نے ان کو اپنے ہاں رکھ لیا. ان کی بیوی جو ہے وہ فریفتہ ہو گئی سیدنا یوسف پر اور دعوت گناہ دی. پھر یہ ہوا کہ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور پھر جیل میں دو لوگ داخل ہوئے, انہوں نے سیدنا یوسف سے اپنے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی, انہوں نے تعبیر بتا دی اور وہ ویسا ہی ہوا جیسا انہوں نے بتایا تھا. پھر بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 جو ہے وہ دبلی گائیں, 7 موٹی گائیں ان کو کھا رہی ہیں اور 7 بالیاں جو ہیں وہ ہری ہیں اور 7 بالکل زرد ہیں, خشک ہیں. تو بادشاہ نے اپنے مصاحبین سے پوچھا کہ بھائی اس خواب کی تعبیر بیان کرو, لیکن وہ اس سے عاجز رہے. تو پھر وہاں جو ان ساقی تھا بادشاہ کا, اس کو یاد آ گیا کہ جیل کے ایک ساتھی تھے, انہوں نے بڑی اچھی تعبیر بیان کی تھی, بلکہ کہا بھی تھا کہ اپنے مالک کے سامنے میرا ذکر کرنا. تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس کی بڑی اچھی تعبیر بتا دی اور کہا کہ 7 سال پہلے جو ہے وہ بہت جو ہے خوشحالی ہوگی, رویدگی ہوگی, تو اس میں تم یہ کرنا کہ جو بھی فصلیں ہوں اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ بالیوں میں ہی چھوڑ دینا, جتنا تم باقی تم نے استعمال کرنا ہے, اور اگلے سال انتہائی سختی کے قحط کے ہوں گے تو جو تم نے بچایا ہے, پسنداز کیا ہے, وہ تم وہاں استعمال کرو. اور پھر بادشاہ نے ان کو مقرر کر دیا زمین کے خزانوں پر اور تمام جو فوڈ مینجمنٹ ہے اس پر ان کو مقرر کر دیا. تو اب وہ قحط کے سال آ گئے اور ہر طرف جو ہے قحط پھیل گیا مصر اور آس پاس کے تمام علاقوں میں. تو بہت دور دور سے بھی لوگ آتے تھے, چونکہ یہاں پہ جو ہے وہ مال موجود تھا, اناج موجود تھا, تو دور دور سے لوگ یہاں پر آ کے لے کے جاتے تھے, معاوضے پر روپیہ دیتے تھے, اس کے اگینسٹ جو ہے غلہ لے کے جاتے تھے. تو کنعان جہاں پہ سیدنا یعقوب اور ان کے بیٹے تھے وہاں تک بھی قحط پہنچ گیا. اب آگے وہاں قصہ بیان ہوا ہے کہ ان کے جو ہے وہ بھائی سیدنا یوسف کے آئے ہیں, وہ بھی اس طرح سائل بن کر آئے کہ ہمیں بھی جو ہے غلہ دیا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون. اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے اور وہ ان کے پاس داخل ہوئے, تو سیدنا یوسف نے تو ان کو پہچان لیا لیکن وہ ان کو نہیں پہچان سکے. یعنی سیدنا یوسف جو ہے وہ پوچھتے بھی رہتے ہوں گے کہ بھئی کنعان کی طرف سے لوگ آئے یا نہیں آئے, بتایا گیا ہوگا کہ وہاں سے ایک قافلہ آیا ہے, اور پھر اس تعداد میں لوگوں کو دیکھا تو پہچان لیا. جبکہ جو بھائی تھے وہ تو چونکہ اپنی طرف سے ان کا قصہ تمام کر چکے تھے اور ان کو یہ باور ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک صاحب جن کو ہم نے اپنے تئیں کنویں میں ڈال دیا تھا وہ یہاں پر ایک جو ہے وہ بالکل حکمران اور سربراہ کی حیثیت سے جو ہے وہ رہ رہے ہیں. वलम्मा जहज़हुम बिजहाज़हिम, तो जब उन्होंने अब मुआवजा दिया उसके अगेंस्ट उनको गल्ला दे दिया गया, वो सारा गल्ला तैयार कर दिया गया, ऊँटों पर लदवा दिया गया। काल तूनी बि अखिल लकुम मिन अबीकुम, तो सैयदना यूसुफ ने कहा कि भाई जो तुम्हारा भाई है तुम्हारे बाप की तरफ से, यानी तुम्हारा अल्लाती भाई है, माएँ मुख्तलिफ हैं भाई एक है, उसको भी लेकर आओ। अब ज़ाहिर बात है जैसे राशनिंग होती है ना, तो राशन कार्ड बनते हैं, तो उन्होंने आके बताया होगा कि हमारे घर में इतने अफराद हैं, ये हम भाई हैं, 10 भाई हैं, एक भाई वालिद साहब के पास हैं और वालिद हैं वालदा हैं, तो इन सब का हमें हिस्सा चाहिए। तो कहा कि वो जो तुमने कहा है ना कि तुम्हारा भाई है, बाप जो है, बाप जाया भाई जो है, वो उसको भी साथ लेकर आना अगली मरतबा। अला तरौना अन्नी उफिल कैला व अना खैरुल मुनज़िलीन, क्या तुम देखते नहीं हो कि मैं पूरा पूरा पैमाना देता हूँ, हर एक को उसका हिस्सा देता हूँ और मैं खूब अच्छी तरह मेहमान नवाजी करता हूँ। यानी मुराद ये कि जो आएगा फिज़िकली उसको उसका हिस्सा मिल जाएगा, तो अगली मरतबा अगर उसका हिस्सा चाहते हो तो उसको लेकर आना। फ़ैलम तूनी भी, और अगर तुम उसको ना लेकर आए मेरे पास, फ़ला कई लकुम इंदी वला तकरबून, तो फिर तुम्हारे लिए कोई भर्ती नहीं है, कोई गल्ला नहीं है और मेरे पास भी ना फटकना। कालू सनुराविद अनहु अबाहु, तो उनके भाइयों ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि अपने वालिद साहब को फिसलाएँ, उनको किसी तरीके से राम करें, क्योंकि ज़ाहरी बात है उनको मालूम था कि पहले वो यूसुफ़ के साथ क्या कर चुके थे, तो ज़ाहरी बात है वो और ज़्यादा हसास हो चुके थे, अब बिन्यामीन को उनके साथ नहीं भेजते थे कहीं। व इन्ना लफ़ाइलून, और हम इंशाल्लाह ये करके रहेंगे, किसी तरीके से वालिद साहब को बहला फुसला के बिन्यामीन को ले आएँगे। व क़ाल लिफ़तियान ही जालू बिदाअतहुम फ़ी रिहालिहिम लअल्लहुम यारिफ़ूनहा इज़न क़लबू इला अहलिहिम लअल्लहुम यर्जिऊन, तो उन्होंने सैयदना यूसुफ़ ने कारकुनों से कह दिया जो खुद्दाम मामूज थे गल्ला वगैरह देने पर, कि भाई जो उनके असबाब है ना उसी में उनकी पूंजी भी वापस रखवा देना, जो मुआवजा दिया है वो भी वापस रखवा देना, शायद कि जब वो अपने घर लौटें तो उसको पहचान लें कि भाई हमारी पूंजी तो हमें मिल गई है, और शायद फिर वो और लौट कर आएँ दोबारा आएँ कि ये तो हमारे साथ बहुत अच्छा मामला हुआ कि गल्ला भी मिल गया और पूंजी भी हमें वापस मिल गई जो हमने मुआवजा दिया था। फ़लम्मा रजऊ इला अबीहिम क़ालू या अबाना मुनिया मिन्नल कैलू फ़अरसिल माना अखाना नक़्तल व इन्ना लहू लहाफिज़ून, तो जब वापस लौटे अपने वालिद के पास तो उनसे कहा कि अब्बा जान हमसे तो भर्ती रोक दी गई, यानी वो भाई के हिस्से की भर्ती हमें नहीं मिली, तो आप हमारे साथ अगली मरतबा भाई को भी भेज दें ताकि हम उसकी भर्ती भी ले आएँ, उसका गल्ला भी ले आएँ, और हम उसकी अच्छी तरह हिफाजत करने वाले हैं, हम उसके निगहबान हैं, उसको कोई गज़न नहीं पहुँचेगी। قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل, سيدنا يعقوب نے کہا کہ کیا میں تم پر ویسے ہی بھروسہ کروں, ویسے ہی اعتماد کروں جیسے میں نے اعتماد کیا تھا تم پر تمہارے بھائی کے معاملے میں, اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں بھی تمہاری باتوں میں میں آ گیا تھا, تمہارے ساتھ بھیج دیا تھا۔ فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين, بس اللہ ہی ہے جو سب سے بہتر نگہبان ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم اس کے محافظ ہیں, کہا کہ نہیں اصل محافظ جو ہے وہ تو اللہ ہے۔ ولما فتحوا متاعهم, اب جب انہوں نے اب سامان وغیرہ اتروایا, غلہ اتروایا, وجدوا بضاعتهم ردت الیہم, تو انہوں نے یہ پایا کہ جو پونجی انہوں نے دی تھی جس کے اگینسٹ انہوں نے غلہ لیا تھا وہ بھی ان کے سامان میں موجود ہے, وہ بھی ان کو واپس دے دی گئی۔ قالوا یا ابانا ما نبغی, تو انہوں نے کہا کہ اے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے, حاذی بضاعتنا ردت الینا, کہ یہ ہماری پونجی تھی جو ہماری طرف ہی لوٹا دی گئی, یعنی ہم نے جو روپیہ پیسہ دیا تھا وہ بھی ہمیں واپس کر دیا گیا۔ مولانا علی میاں علی رحمہ چونکہ بہت اچھی عربی جانتے تھے, ادیب بھی تھے خطیب بھی تھے, تو وہ کہا کرتے تھے خاص طور پہ عربوں کے حوالے سے کہ یہ دین ہم تک جو پہنچا ہے غیر عربوں تک, اجمیوں تک, ہندوؤں تک, تو وہ عربوں کے ذریعے پہنچا ہے, وہی اس دین کے اولین کیریئر تھے اور ان کے ذریعے دین ہم تک آیا۔ لیکن اب بہت سے ایسے علاقے ہیں خاص طور پہ ہند کے علاقے کہ جہاں پر جو ہے وہ دین کی محنت اور اس کے حوالے سے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, اور عربوں کی بہت بڑی اکثریت ایسی ہے جو دین سے بالکل غافل ہو چکی ہے, اسی لیے بہت سے لوگوں کا یہ تاثر ہے, وہ بتاتے ہیں کہ بھائی خاص طور پہ تبلیغی جماعت وغیرہ کے لوگ جب عرب میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے ہمارے یہاں سے دین ادھر آیا تھا اور تمہاری طرف گیا تھا, اب وہاں سے دین ہم تک پہنچ رہا ہے۔ تو مولانا علی میاں یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں چاہیے کہ اب عربوں کو ہم دین کی دعوت دیں, دین کی طرف لے کر آئیں ताकि जब हम उनको दीन पहुंचा दें तो वो भी फिर यही जुमला कहें, हाज़िही बिदाअतुना रुद्दत इलैना, भाई ये हमारी पूंजी थी जो हमारी तरफ लौटा दी गई, यानी हमसे दीन गया था और हमारे पास वो चीज़ वापस आ गई। व नमीरु अहलना व नहफ़ज़ु अखाना व नज़दादु कैल बाईर, और हम अब जाएंगे तो पूरी रसद लेकर आएंगे और हम जो है अपने भाई की खबरदारी करेंगे, उसकी हिफाज़त करेंगे। व नज़दादु कैल बाईर, और एक बारे शुतर राशन जो है एक पूरा ऊँट भर राशन हम मज़ीद लेकर आएंगे भाई के हिस्से का। ज़ालिक कैलु यसीर, ये भर्ती जो है ये तो बहुत आसान है, सहूलत वाली है, गए और हमें भर्ती मिल गई। या एक तर्जुमा इसका किया गया कि ये जो भर्ती हमें मिली है ये तो बहुत थोड़ी है, यसीर बमानी कलील, ये ज़्यादा देर चलेगी नहीं, तो भाई को भी भेजें ताकि उसका हिस्सा भी मिले। قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم, تو سیدنا یعقوب نے کہا کہ میں ہرگز اس کو نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ یہاں تک کہ تم مجھے پختہ عہد دو, اللہ کو گواہ بنا کر جو ہے مجھ سے جو ہے عہد کرو کہ تم ضرور بے ضرور اس کو میرے پاس واپس لے کر آؤ گے, الا یہ کہ تم سارے کے سارے گھیر لیے جاؤ, سارے کے سارے کہیں قید ہو جاؤ, محسود ہو جاؤ, تب تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کو لے کر آنا۔ فلمّا آتوہ موثقہم, پھر جب انہوں نے ان کو دے دیا پورا عہد اور میثاک ان سے کر لیا, قال اللہ علی ما نقول وکیل, تو سیدنا یعقوب نے کہا کہ اللہ ہی نگہبان ہے اس پر جو تم کہہ رہے ہو, اللہ ہی اب اس پہ گواہ ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ, اور انہوں نے کہا کہ اے بیٹو جب تم جانا شہر میں تو مت داخل ہونا ایک دروازے سے بلکہ داخل ہونا مختلف دروازوں سے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء, اور میں تمہیں نہیں بچا سکتا تمہیں اللہ سے کچھ بھی, ان الحکم الا للہ, ہر چیز کا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے, علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون, اور اسی پر میں توکل کرتا ہوں, اعتماد کرتا ہوں, اور چاہیے کہ تمام بھروسہ کرنے والے اسی پہ بھروسہ کریں۔ اب یہ انہوں نے کیوں کہا؟ ایک سبب تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ 11 بھائی ہیں کڑیل, وہ جائیں گے, ان کے ساتھ جو ہے وہ اسباب بھی ہے, ان کے پاس پونجی بھی ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چور اچکے یا ڈاکو ان کے پیچھے پڑ جائیں۔ اور دوسری بات جو زیادہ تر مفسرین نے لکھی ہے کہ یہ انہوں نے کیوں کیا, یہ ایک جیسے ایک تدبیر کی انہوں نے کہ اس طریقے سے 11 جو ہے وہ کڑیل بھائی اکٹھے داخل ہوں گے شہر میں, گویا ان کو نظر نہ لگ جائے, اور جیسے نظر بد ہوتی ہے, حسد کی نگاہ ہوتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العین حق, یہ جو نظر لگنے کا عمل ہے یہ حق ہے, یہ نظر لگا کرتی ہے, اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ بس یہ ایک تدبیر ہے, باقی ظاہری بات ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم, تو جب وہ اس ویسے ہی داخل ہوئے جیسے ان کے والد نے ان کو حکم دیا تھا۔ ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها, تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی چیز ان کو نہیں بچا سکتی تھی کچھ بھی, مگر یہ ایک خواہش تھی, ایک آرزو تھی یعقوب کے جی میں جس کو انہوں نے پورا کر لیا, تو یہ تدبیر ہے, تدبیر انسان کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ, اور بے شک وہ علم والے تھے بسبب اس علم کے جو ہم نے ان کو دیا تھا, جو ہم نے ان کو سکھایا تھا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن لوگوں کی اکثریت خبر نہیں رکھتی, جانتی نہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ, تو جب وہ سارے کے سارے پہنچے سیدنا یوسف کے پاس, تو ایک خاص موقع پہ سیدنا یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کو جو ہے وہ الگ خلوت میں لے گئے اور ان سے کہا, قال انی انا اخوکا, اور کہا کہ بے شک میں تمہارا بھائی ہوں, وہی بھائی جس کو بچپن میں جو ہے کہیں گرا دیا گیا تھا, میں وہی بھائی ہوں۔ فلا تبتئس بما کانوا یعملون, تو یہ جو تمہارے بھائیوں نے پہلے کیا جو سازشیں کیں, تو اس معاملے میں غمگین مت ہو, پریشان مت ہو۔ فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ, تو جب ان کا اسباب تیار کر دیا گیا تو وہ جو سکایا تھا پانی کا جو پیالہ تھا, یا وہ جو پیمانہ تھا خاص بادشاہ کا, خصوصی چاندی کا یا شاہی جام تھا, اس کو ان کے بھائی کے سامان میں رکھوا دیا, بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا۔ ثم اذن مؤذن, اور پھر پکارا ایک پکارنے والا, ایتہ العیر, اے قافلے, یعنی قافلہ کا مطلب ہے ایتو اہل العیر, کہ اے قافلے والو, انکم لسارقون, بے شک تم تو چور ہو۔ یعنی آگے جا کے بات واضح ہو جائے گی کہ یہ تدبیر خود اللہ تعالیٰ نے ان کو سجھائی تھی वो चाहते थे कि अपने भाई को अपने पास रखें, लेकिन वहाँ का जो मुल्क का कानून था उसमें इसकी गुंजाइश नहीं थी कि किसी को डिटेन इस तरह किया जा सके, इल्ला ये कि भाई इस तरह का कोई मामला हो। तो उनके भाई के सामान में वो शाही जाम जो है वो रखवा दिया गया, और फिर ढूंढिया पड़ी कि भाई कहाँ गया वो शाही जाम। तो ज़ाहरी बात है किसी पुकारने वाले ने कहा कि भाई ए काफ़िले वालों, तुम ही यहाँ आए थे, उसके बाद ही ये जाम कहीं गुम हुआ है, तो बेशक तुम चोर हो। और ज़ाहरी बात है ये सैयदना यूसुफ़ के कहने पर हुआ होगा या नहीं भी होगा, तब भी ये झूठ नहीं है, क्योंकि बाहर ये लोग चोर तो थे। ज़ाहरी बात सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की चोरी की और किस तरीके से लेकर गए और सारा मामला हुआ। क़ालू व अक़बलू अलैहिम माज़ा तफ़क़िदून, तो वो जो काफ़िले वाले थे वो उनकी तरफ मुतवज्जे हुए, पुकारने वालों की तरफ, और कहा कि भाई तुम्हारी क्या चीज़ गुम हो गई है। क़ालू नफ़क़िदु सुआल मलिक, उन्होंने कहा कि जी बादशाह का पैमाना गुम हो गया है। वलिमन जा बिही हिमलु बईरिन व अना बिही ज़ईम, और जो उसको लाएगा उसको इनाम के तौर पर जो है एक बोझ ऊँट मिलेगा, और व अना बिही ज़ईम, और मैं उसका ज़मानती हूँ। क़ालू तल्लाहि लक़द आलिम तुम मा जिना लिनुफ़सिद फ़िल अर्ज़ व मा कुन्ना सारिकीन, तो काफ़िले वालों ने कहा कि अल्लाह की कसम तुम लोग जानते हो हम यहाँ किसी शरारत के लिए थोड़ी आए हैं, और हम चोर भी कभी नहीं थे। क़ालू फ़मा जज़ाउहु इन कुन्तुम काज़िबीन, तो उन लोगों ने जो निगरान थे उन्होंने कहा कि फिर तुम खुद ही बता दो कि अगर तुम्हारे यहाँ से वो पैमाना निकल आया तो उसकी सज़ा क्या है अगर तुम झूठे हो। क़ालू जज़ाउहु मा वुजिद फ़ी रहलिही फ़हुवा जज़ाउ, अब गोया ऐसा लगता है कि सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम और सैयदना इब्राहिम के यहाँ जैसे जो भी उस वक्त शरीयत थी उसमें यही कानून था कि जिसके यहाँ से भी चोरी का माल निकले उसको महबूस कर लिया जाए, उसको रोक लिया जाए। तो उन्होंने ख़ुद से ये बताया, यानी काफ़िले वालों ने बताया कि भाई जिसके यहाँ से जिसके पास से ये मिलेगा सामान बस वही बदला है, उसी को रख लिया जाए। कदाली का नज़ ज़ालिमीन, हम तो यही सज़ा देते हैं ज़ालिमों को। फ़बदा बिअवियतिहिम क़बला वियाई अखी सुम्मा इस्तख़रजहा मिन वियाई अखी, तो फिर सैयदना यूसुफ़ ने जो है तलाशी शुरू की, पहले अपने दूसरे भाइयों के सामान की तलाशी शुरू की और फिर अपने भाई की सामान की तलाशी की और फिर वहाँ से उसको बरामद कर लिया। गजाली का कितना ली यूसुफ़, कहा कि इसी तरीके से ये दाव हमने सैयदना यूसुफ़ को सुझाया था, इसकी ज़िम्मेदारी सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ नहीं है बल्कि अल्लाह की तरफ। हमने एक तदबीर सिखाई थी और एक ख़ास तौरिया के अंदाज़ में हमने बताया था कि इनको रोक लिया जाए। मा कान लियाखुज़ अखाउफ़ी दीन अल-मलिक इल्ला अन यशा अल्लाह, वो हरगिज़ नहीं रोक सकते थे अपने भाई को बादशाह के कानून में या बादशाह के निज़ाम में, मगर ये कि जो अल्लाह चाहे। यहाँ दीन का लफ्ज़ बिल्कुल उन्हीं मानों में है कि जो है लॉ ऑफ द लैंड होता है, जो भी निज़ाम है, कहा कि उसके ज़रिए उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी कि किसी बाहर से आने वाले आदमी को रोक लिया जाए मगर इस तरीके से। नरफ़ दर्जात मन नशा, और हम जिसके चाहते हैं दर्जात बुलंद करते हैं। वो फ़ौक कुल ज़ी इल्मिन आलीम, और हर जानने वाले के ऊपर एक और जानने वाला है, यानी एक तो ये है कि हायरार्की होती है, इल्म रिलेटिव होता है, हर आलिम से बड़ा आलिम भी मौजूद होता है, और एक ये कि आलिम अल आलिम, अल्लाह ताला तो सबसे बड़ा इल्म वाला है, वो तो हर आलिम के ऊपर है। क़ालू इन यसरिक फ़क़त सरका अख़ुल लहू मिन क़ब्ल, तो अब सैयदना यूसुफ़ के भाइयों ने कहा कि ठीक है अगर उसने चोरी की है तो इसके भाई ने भी तो इससे पहले चोरी की थी, यानी सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई कि इसका एक पहला भाई था वो भी इस तरह की हरकतें करता रहता था। फ़सद रहा यूसुफ फ़ी नफ़सिही वलम युब्दिहा लहुम, तो सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उसको अपने जी में छुपा लिया और उनको जतलाया नहीं, और जी में क्या बात कही, क़ाल अंतुम शर्रुम मकाना, और जी में कहा कि बेशक तुम सबसे बदतरीन मंजिलत पर हो, बहुत ही बुरे लोग हो। इस मौके पर भी, यानी वो जो भाई जिसके साथ तुमने ज़्यादती की थी उसको डिफेम करना तुम नहीं भूले। वल्लाहु आलमु बिमा तसिफून, और अल्लाह खूब जानता है जो कुछ तुम बयान करते हो। क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ु, अब उन्होंने मिन्नतें करनी शुरू कर दी, उन्होंने कहा कि ए अज़ीज़ इन्ना लहू अबन शैखन कबीरन, कि हमारे वालिद साहब हैं और बहुत बूढ़े हैं। फ़खुज़ अहदना मकाना, तो आप ऐसा करें कि हम में से किसी को रख लें इसकी जगह। इन्ना नराक मिनल मुहसिनीन, बेशक हम आपको एहसान करने वाला देखते हैं, चूँकि बिन्यामीन के मामले में तो वो पुख्ता कस्में देकर आए थे अपने वालिद को कि साथ लेकर आएंगे। क़ाल माज़ अल्लाह, सैयदना यूसुफ़ ने कहा अल्लाह की पनाह, अन्ना खुज़ा इल्ला मम वजदना मताअना इंदहू, कि मैं रोकूं या मैं अपने पास डिटेन करूं मगर उसको जिसके यहाँ हमने अपना सामान पाया। भाई जो चोर है जिसके पास से सामान निकला है उसी को हम अपने पास रखेंगे, किसी और को नहीं रख सकते। इन्ना इज़ लज़ालिमून, अगर हम ऐसा करेंगे तो बेइंसाफ़ों में से हो जाएंगे। फ़लम मस्तई असू मिनहू खलसू नजिया, जब वो तमाम मिनते तरले करके मायूस हो गए इस मामले में तो वो अकेले होकर आपस में उन्होंने मशवरा किया। قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف, उनके जो बड़े भाई थे इनके बारे में यहूदा या यहूजा उनका नाम आता है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारे वालिद ने तुमसे पुख्ता अहद लिया था और अल्लाह को गवाह ठहरा कर लिया था, और इससे पहले जो तुम ज्यादती कर चुके हो यूसुफ के मामले में, और लगता है कि ये वही भाई हैं कि जिन्होंने उस वक्त भी यही मशवरा दिया था कि भाई उसको कत्ल न करो बल्कि किसी अंधे कुएं में डाल दो। फलन अब रहल अर्ज़ हत्ता यज़न अली अबी अव यहकुम अल्लाहु ली, तो कहा कि मैं तो इस ज़मीन से नहीं टलूंगा, मैं तो अब यहाँ से नहीं जाऊँगा यहाँ तक कि वालिद साहब मुझे इजाज़त दे दें आने की, या अल्लाह ताला मेरा मामला चुका दे, या मुझे मौत आ जाए या कोई और मामला हो जाए। वह हुआ खैरुल हाकिमीन, और अल्लाह जो है वो सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला है। इर्जिऊ इला अबीकुम, अब जाओ तुम सब और अपने हमारे वालिद साहब से कहना, फ़कूलू या अबाना, और कहो कि ए अब्बा जान इन नबना का सरक, कि आपका बेटा तो चोर निकला। वमा शहीदना इल्ला बिमा आलिमना, और कहा कि हमने तो वही कहा था जिसकी हमें खबर दी गई, अब वो चोर है या नहीं है ये हम नहीं जानते, लेकिन जो हमें बताया गया कि उसके यहाँ सामान निकला है तो हम क्या कर सकते हैं। वमा कुन्ना लिल्गैब हाफिज़ीन, और हम जो है वो गैब की बातों को जानने वाले नहीं हैं, असल में क्या हुआ हमें नहीं मालूम, फेस वैल्यू पे ऐसा लगता है कि उन्होंने चोरी की है। वस अलिल क़रियतल्लती कुन्ना फ़ीहा, और पूछिए उस बस्ती से जिसमें हम थे, यानी बस्ती का मतलब अहले बस्ती से। वलईर अल्लती अकबलना फ़ीहा, और उस काफ़िले से या काफ़िले वालों से जिसमें हम आए हैं, आप खुद तहकीक कर लें, जो है वहाँ जाके पूछ लें बस्ती वालों से, काफ़िले वालों से पूछ लें क्या मामला हुआ। व इन्ना लसादिकून, और बेशक हम सच्चे हैं। अब चूँकि ज़ाहिर बात पहले तो उन्होंने झूठ बोला था सैयद यूसुफ़ के मामले में, यहाँ वाक़ियतन वो सच्चे थे, तो इस वजह से कहा कि भाई जिससे चाहें आप तहकीक कर लें। क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, तो उन्होंने कहा कि तुमने अपने से अपने जी से ये बात मना ली है, फ़सब्रुन जमील, तो मेरे लिए तो अब भी वही मामला है कि मुझे बस एक खूबसूरत सब्र करना है। और सब्र जमील कौन सा होता है कि जिसमें जजा फजा न की जाए, लोगों के सामने शिकवा न किया जाए, और जो है हाई दुहाई न मचाई जाए। असल्लाहु अय्यतियनी बिहिम जमीआ, उम्मीद है कि अल्लाह ताला इन सब को मेरे पास इकट्ठा करके ले आएगा, यानी मुझे अभी भी उम्मीद है। इन्नहू हुवल अलीमुल हकीम, बेशक वो इल्म वाला हिकमत वाला है। व तवल्ला अनहुम, और वो उनसे हटा, सैयदना याकूब उनसे पीछे हटे। वक़ाल या असफ़ा अला यूसुफ़, और सैयदना यूसुफ़ का जो गम था वो एकदम ताज़ा हो गया जब एक और बेटा जो है उनके हाथ से चला गया। कहा कि ऐ अफसोस यूसुफ़ पर, वब यज़्ज़त आईनाहु मिनल हुज़्न, और गम से उनकी आँखें सफ़ेद हो गई थी, यानी उनकी आँखें जाती रही थी, रो रो के उनकी आँखें ज़ाय हो गई थी। फ़हुवा कज़ीम, और वो अपने आप को घोंट रहे थे उस गम को अपने अंदर लिए हुए थे। क़ालू तल्लाहि तफ़तऊ तज़कुरु यूसुफ़ हत्ता तकून हरदन अव तकून मिनल हालिकीन, तो उनके बेटों ने कहा कि अल्लाह की कसम लगता है कि आप यूसुफ़ का जिक्र छोड़ेंगे ही नहीं, कभी उसकी याद आपके जी से जाएगी नहीं, यहाँ तक कि आप इसी गम में घुल जाएँ और इसी में आप हलाक हो जाएँ। क़ाल इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, तो सैयदना याकूब ने कहा कि देखो मैं अपना शिकवा और अपना इस्तराब मैं अल्लाह की जनाब में कहता हूँ, तो यानी असल में तो तकलीफ़ का परेशानी का इजहार बंदों के सामने करना ये गोया ऐसी बात है कि जो अल्लाह को पसंद नहीं है या तवक्कुल के मुनाफी है, अल्लाह के सामने जारी करना ये कोई ऐसी बात नहीं। इसीलिए हमारे बड़े उनके अरबों में भी बहुत से लोग हैं, उनका ये मुहावरा होता है अशकवतु इलल्लाह, अशकवतु इलल्लाह, इलल्लाहिल मुश्तका, कि भाई शिकवा है जो अल्लाह ही से करना है। तो अल्लाह ताला से जो शिकवा होता है वो तो मोहब्बत का इजहार है, वो कोई शिकायत नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है, बस ताल्लुक़ की शिद्दत है जो बाज़ औक़ात एक ख़ास तरह का शिकवा पैदा करती है। और यही मामला था जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ताइफ़ में आपके साथ जो हुआ उस मौके पर आपने भी इस्तिगासा किया था कि अल्लाहुम्मा इलैका अश्कू ज़ौफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी इलन्नास, कि अल्लाह मैं तुझसे जो है वो शिकवा करता हूँ अपनी कुव्वत की कमज़ोरी का, अपने असबाब की कमी का, और इसका कि तूने लोगों मुझे लोगों के हवाले कर दिया है, लोगों के सामने हल्का कर दिया। वआलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, और मैं अल्लाह की तरफ से वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ज़ाहिर बात है वो पैगम्बर थे, अल्लाह ताला उनकी रहनुमाई करता था। या बनी यज़हबू फ़तहस्ससू मिन यूसुफ़, ए बेटो जाओ और अब यूसुफ़ की भी, यूसुफ़ व अखी ही, और अपने इस भाई बिन यामीन और वो जो यूसुफ़ है उनकी सब की टोह लगाओ, ان کو تلاش کرو. ولا تیأسوا من روح اللہ, اور دیکھو اللہ کی جو فیض ہے, اللہ کی جو رحمت ہے, اس سے کبھی مایوس نہ ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, کہ اللہ کے فیض سے, اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر وہ لوگ کے جو کافر ہیں, مگر وہ لوگ کے جو ناشکرے ہیں. فلما دخلوا علیہ, تو پھر جب وہ داخل ہوئے, دوبارہ گئے سیدنا یوسف کے پاس, عزیز مصر کے پاس, انہوں نے کہا قالوا یا ایہ العزیز, انہوں نے پھر فریاد کی کہ اے عزیز مصر, مسنا و اہلنا الضر, کہ ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر بڑی ہی سختی آ پہنچی ہے. وہ جئنا ببضاعت مزجات, اور ہم بہت ہی ناقص جو ہے وہ پونجی لے کر آئے ہیں. فاوفی لنا الکینا و تصدق علینا, تو ہمیں ہماری بھرتی پوری پوری دے دو, اور بلکہ ہم پہ صدقہ و خیرات بھی کرو, احسان بھی کرو. ان اللہ یجزی المتصدقین, بے شک اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو, نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. اب ظاہر بات, جب یہ واقعہ ہوا اور کس طریقے سے بھائی جو ہے پھٹے حالوں میں آئے اور زاری کی, تو جیسے ایک دم ان کا دل بھر آیا سیدنا یوسف کا, اور گویا وہ اس بات کو چھپا نہیں پائے, اس کو پھر ڈسکلوز کر دیا. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون, تو سیدنا یوسف نے کہا کہ تمہیں خبر ہے کہ تم نے کیا کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جب تم جاہل تھے, بے سمجھ تھے. اب ایک دم جب ان کو خیال ہوا کہ ان کو کیسے پتہ لگا اس بپتا کا, تو دیکھا ایک دم تو خیال ہوا کہ شاید یہ سیدنا یوسف ہی ہیں. قالوا انک لانت یوسف, تو انہوں نے کہا کہ کیا تم ہی یوسف ہو. قال انا یوسف وهذا اخی, کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے, یعنی میرا مطلب سگا بھائی ہے. قد من اللہ علینا, بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا. اب اس موقع پر بھی کوئی ناز نہیں ہے, کوئی فخر نہیں ہے کہ دیکھو میں نے کیسا مرتبہ حاصل کر لیا, کیسا میرا مقام ہے, جو کچھ مجھے حاصل ہے یہ اللہ کا احسان ہے. انہ من یتقی و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, کہ بے شک جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ خوب کاروں کی نیکی کو, اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا, اس موقع پہ بھائیوں نے اعتراف کیا اور کہا کہ اللہ کی قسم بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ترجیح دی ہم پر. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ, اور ہم ہی خطا کار تھے. پہلے بھی اللہ نے آپ کو نوازا تھا, ہم نے آپ سے حسد کیا, اور اب تو بالکل بات واضح ہو گئی کہ آپ کو ہم پر ایک واضح شرف حاصل ہے. قال لا تصریب علیکم اليوم, تو سیدنا یوسف نے کہا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے. یغفر اللہ لکم, اور میں اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کرے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, اور بے شک وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والا. یہی جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اپنے ان لوگوں کو, قریبی اعزا کو, کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا اور آپ کو جو ہے مکہ سے نکال دیا. اذهبوا بقميصي هذا, جاؤ یہ میرا کرتا لے جاؤ. فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا, اور اس کو ڈال دو والد صاحب کے جو ہے وہ چہرے پر, تو ان کی آنکھیں لوٹ آئیں گی, ان کی بینائی لوٹ آئے گی. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ, اور تم سب گھر والوں کو لے کر میرے پاس آؤ. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ, اور جب قافلہ وہاں سے چلا یعنی مصر سے چلا, قَالَ أَبُوهُمْ, تو پیچھے کنعان میں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے, تو سیدنا یعقوب نے کہا اِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ یوسف, کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اب ظاہری بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے, اور ظاہری بات ہے جو محبت ہوتی ہے والد کو, اور پھر ایک معاملہ ہو گیا, آپ کو اندازہ ہو گیا کہ کوئی ایسا معاملہ ہونے والا ہے, تو کہا کہ میں تو خوشبو پاتا ہوں یوسف کی. لولا ان تفندون, باقی گھر والوں سے کہا مبادہ تم مجھے یہ نہ کہو کہ بڑے میاں تو بہک گئے, ان کا تو لگتا ہے کہ بالکل ہی مت ماری گئی ہے کہ اب ان کو ان کی خوشبو آنے لگی ہے. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم, تو باقی جو گھر والے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ تو ابھی تک اس پرانی غلطی میں مبتلا ہیں, آپ کو ابھی بھی توقع ہے کہ یوسف جو ہے آپ سے آ ملے گا. فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا, تو جب وہ خوشخبری سنانے والا آیا اور ڈالی انہوں نے جو ہے وہ ان کا کرتا ان کے چہرے پر, فارتد بصیرا, تو ان کی بینائی لوٹ آئی. قال الم اقل لکم, اس موقع پہ سیدنا یعقوب نے کہا کیا میں تم سے نہیں کہا تھا, انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, کہ میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں جانتے. قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا, اب بیٹوں نے جو ہے معافی طلب کی اور کہا کہ اے ابا جان ہمارے گناہوں کے لیے ہم سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجئے. انا کنا خاطئین, بے شک ہم ہی جو ہے وہ خطا کرنے والے تھے, چوکنے والے تھے. قال سوف استغفر لکم ربی, تو سیدنا یعقوب نے کہا کہ عن قریب मैं तुम्हारे लिए अपने रब से इस्तिग़फ़ार करूँगा, इन्नहु हुवल गफ़ूरु रहीम, बेशक वो बख्शने वाला रहम करने वाला है। ज़ाहिरी बात है कि इस्तिग़फ़ार के लिए कुछ जगहें होती हैं, कुछ औकात होते हैं जो ख़ुसूसी हैं। तो कहा होगा कि भाई अभी रात के वक्त, तहज्जुद के वक्त, ख़ास लम्हात में मैं तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करूँगा। इन्नहु हुवल गफ़ूरु रहीम, बेशक वो बख्शने वाला रहम करने वाला है। फ़लम्मा दखलू अला यूसुफ़ आवा इलैहि अबवैह, जब सारे लोग पहुँच गए तो सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालदैन को अपने पास जगह दी गोया मसनद पर। वकालत खुलू मिस्र इंशा अल्लाहु आमिनीन, और उनसे कहा कि अब दाखिल हो जाओ मिस्र में अल्लाह अगर अल्लाह चाहेगा, दिल जमी के साथ, अमन के साथ। तो ये किस्सा था जिसकी वजह से बनी इसराइल जो है वो मिस्र पहुंची, वो जो 12 बेटे थे उनकी फिर आगे नस्ल चली। वरफ़ा अब वही आल अरशी व खर्रू लहू सुजदा, और उनको ऊँचा बिठा लिया अपने साथ जो है अपने वालदैन को अर्श पर, तख्त पर, और उन वो सब गिर गए उनके सामने सजदे में। वकाल या अबती, और उस मौके पे कहा सैयदना यूसुफ ने, ए अब्बा जान हाजा तवील रुया मिन कबल, ये है उस ख्वाब का अंजाम, उसकी ताबीर जो मैंने इससे पहले देखा था। वो जो बचपन में देखा था कि मैं देखता हूँ कि जो है वो 11 सितारे और सूरज और चाँद मेरे आगे सजदा रेज हैं। कद जाला रब्बी हक्का, मेरे रब ने उसको सच्चा कर दिखाया। तो अब जाहिर बात है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो सजदे ताज़ीमी था वो जायज़ था। कुछ लोग ये कहते हैं कि असल में अल्लाह ताला को ही सजदा था, तो सैयदना यूसुफ़ और उनके वालदैन को गोया किबला बनाया था। लेकिन बहरहाल सजदे ताज़ीमी, जो ज़रूरी नहीं है कि पूरा सर पर माथा रखना हो, जैसे एक ख़ास तरह से कौरमीश बजा लाना होता था उस तरह का मामला था। लेकिन बहरहाल इस शरीयत में जो है वो सजदे ताज़ीमी को भी अल्लाह के नबी ने हराम करार दे दिया। वक़द अहसन नबी इज़ अखरजनी मिन सिजनी वजा बिकुम मिन अलबदवी मिन बादी अन नज़ग शैतान बैनी व बैन इख्वती, और मेरे रब ने मुझ पर एहसान किया जब उसने मुझे निकाला कैद खाने से और तुमको भी ले आया बादिया से, इसके बाद कि शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान जो है वो झगड़ा डाल दिया था। एक तो वही बात है कि अल्लाह ताला की तरफ इसको मंसूब किया है कि मैं आज जिस मनसब पर हूँ ये अल्लाह का एहसान है, और दूसरी बात ये कि अपने भाइयों को भी बहुत शर्मिंदा नहीं कर रहे, बल्कि कह रहे हैं कि भाई ये शैतान है जिसने तुम्हें चूक लगाई और शैतान की वजह से तुम लोग जो है वो ख़राब हो गए। इन रब्बी लतीफ़ुल लिमा यशा, और बेशक मेरा रब जो है बहुत बारीक बीन है, उसकी तदबीरें बहुत सटल होती हैं, जो चाहता है वो करता है। इन नहु हुवल अलीमुल हकीम, बेशक वो इल्म वाला हिकमत वाला है। रब्बी कद आतैतनी मिनल मुल्क वअल्लमतनी मिन तअवीलिल अहादीस, ए रब तूने बेशक मुझे हुकूमत भी अता की और तूने मुझे सिखाया बातों के अंजाम का इल्म या ख्वाबों की ताबीर का इल्म। फातिर समावात वल अर्ज़, ए अल्लाह तू ही आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है। अंत वली फिर दुनिया वल आखिरा, तू ही मेरा कारसाज है दुनिया में भी और आखरत में भी। तवफ़नी मुस्लिमा व अलहिकनी बिसालिहीन, कि ए अल्लाह तू मुझे फर्मा बरदारों में मौत देना और मुझे आखरत में नेक बख्तों के साथ जा मिलाना। अब एक अल्लाह के जलील क़द्र पैगम्बर हैं, जो पैगम्बर के बेटे हैं, पैगम्बर के पोते हैं, पड़ पोते हैं, वो भी क्या कह रहे हैं कि सबसे बड़ा शरफ़ क्या है कि इंसान इस हाल में जान दे कि वो अल्लाह का फर्मा बरदार हो, और सबसे बड़ी कामयाबी क्या है कि आखरत में नेकों कारों में उठाया जाए। ज़ालिक मिन अम्बाइल ग़ैबी नूही ही लैक, ये गैब की ख़बरें हैं जो ए नबी हम आपकी तरफ वही करते हैं। वमा कुंत लदैहिम इज़ अजमाऊ अमरहुम वहुम यमकुरून, और आप तो उस वक्त उनके पास नहीं थे जब वो अपना मामला जो है वो ठहराने लगे और तरह तरह का फरेब देने लगे। वमा अक्सरुन नासी वलव हरस्त बिमुमिनीन, और ए नबी अगर आप कितनी ही लालच करें, कितनी ही आर्ज़ू करें, तो लोगों की अक्सरियत तब भी ईमान लाने वाली नहीं है। ये थीम कुरान मजीद में बार बार आता है कि अल्लाह के नबी आप बहुत हरीस हैं इनकी हिदायत के लिए, आप अपने आप को हलकान किए दे रहे हैं, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला की अपनी हिकमत है, जो अल्लाह की तरफ झुकता है अल्लाह उसको जो है वो हिदायत देता है। वमा तसअलुहुम अलैहि मिन अज्र, और ए नबी आप इनसे किसी मुआवजे के तलबगार तो नहीं हैं। इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, और ये कुरान तो नहीं है बस तमाम जहान वालों के लिए नसीहत। अब ज़ाहरी बात है जो किस्सा है जिसका मैंने पहले अर्ज़ किया था कि इसमें मुशरिकीन मक्का के लिए बहुत नसीहत है कि जो चालें भी वो अल्लाह के पैगम्बर के ख़िलाफ़ चल रही हैं वो तमाम अकारत जाएँगी और अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला गलबा देंगे, और एक वक्त वो भी जो है बरादरान यूसुफ़ की तरह हाथ बांधे उनके सामने खड़े होंगे। वकायम मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्द यमुज़ून अलैहा वहुम अन्हा मुरिज़ून, और आसमानों और ज़मीन में कितनी ही निशानियां हैं अल्लाह की जिस पर से इनका गुजर होता है और वो उस पर ध्यान नहीं देते। वही बात कि बार बार कहते हैं कि कोई हिस्सी मौजदा दिखाओ, कोई ख़जाना तुम्हारे लिए आ जाए, कोई फरिश्ते तुम्हारे आगे आएँ, तो कहा कितनी निशानियाँ हैं इर्द गिर्द। मुझे कहा ना कि चश्म हो तो आईना खाना है जहाँ, मुंह नज़र आते हैं दीवारों के बीच, तो अगर तो आदमी की निगाह हो ना तो हर चीज़ अल्लाह की निशानी है, लेकिन ये तमाम निशानियों से गुजर जाते हैं, एरास करते हैं। वमा युमिनु अक्सरहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, और लोगों की अक्सरियत अल्लाह पर ईमान नहीं लाती मगर इसके साथ वो शिर्क भी करती है, क्योंकि शिर्क जो है वो अल्लाह के इनकार का नाम थोड़ा ही है। मुशरिकीन, हर मुशरिक अल्लाह को मानता है लेकिन करता क्या है कि अल्लाह को मानने के साथ साथ कुछ और हस्तियों को भी साथ शरीक कर लेता है। अफ अमीनू अन तातियहुम गाशियतुम मिन अज़ाबिल्लाहि औ तातियहुम अस्सातु बग़्ततन वहुम ला यशुरून, क्या ये लोग इससे नडर हो गए हैं कि उन पर आ जाए एक आफत अल्लाह के अजाब की, या उन पर वो असा ही आ जाए यानी क़्यामत ही बरपा हो जाए, वहुम ला यशुरून और उनको खबर ना हो। कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह, ए नबी फरमा दीजिए ये है मेरी राह, तौहीद की राह, अल्लाह की राह, मैं तो अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। अला बसीरतिन, पूरी बसीरत के साथ, समझ बूझ के साथ, ये कोई अटकल के साथ नहीं सारे काम हो रहे, अला वजील बसीरत दावत है। अना व मनी तबानी, मैं भी अला वजील बसीरत अल्लाह की तरफ बुला रहा हूँ और जो मेरी पैरवी कर रहे हैं वो भी अला वजील बसीरत अल्लाह की तरफ दावत दे रहे हैं। व सुबहान अल्लाह व मा अना मिनल मुशरिकीन, और पाक है अल्लाह और मैं मुशरिकों में से हरगिज़ नहीं हूँ। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम मिन अहलिल कुरा, और हमने आपसे पहले नहीं भेजा मगर मर्दों को रसूल बनाकर भेजा, हमने उनकी तरफ वही की बस्तियों के रहने वालों में से। तो इससे एक बात तो ये वाज़ेह हो गई कि हमने इंसानों की तरफ जब भी मबूस किए लोगों के लिए तो हमने इंसानों ही को जो है वो पैगंबर बनाया, फरिश्तों को हमने कभी भी मबूस नहीं किया। और दूसरी बात यह कि हमने मर्दों को ही नबी बनाया, यानी नबूवत का जो मनसब है उसके जो तकाजे हैं उसके लिए आम तौर पे यानी मर्द ही मुनासिब हैं। तो जो ख़वातीन हैं उनके लिए और बड़े मरतबे हैं, सिद्दीकियत का मरतबा है और बाकी मरातब हैं, लेकिन नबूवत और रिसालत से सरफराज जो है वो मर्दों ही को किया गया है। और मिन अहलिल कुरा, अहले बादिया में से नबी नहीं बनाए गए, चूँकि आम तौर पर वो जो है वो तुंद लोग होते हैं, सख्त लोग होते हैं। और दूसरी बात है कि चूँकि दीन की दावत देनी भी जो है सबसे मरकजी जगह में होती है तो नबी उन्हीं जगहों से मुंतखब किए जाते हैं। अफलम यसीरू फिल अर्ज, तो क्या उन्होंने ज़मीन में चलत फिरत नहीं की। फ़यन्ज़ुरू कैफ़ काना आक़िबतुल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, तो वो देखते कि कैसा अंजाम हुआ उन लोगों का जो इनसे पहले थे। वला दारुल आख़िरति खैरुल लिल्लज़ीन तक़ौ, और आख़िरत का घर तो बहुत बेहतर है उन लोगों के लिए जो तकवा की रविश इख्तियार करें। अफला ताकिलून, तो क्या तुम अक़ल से काम नहीं लेते। हत्ता इस्तयअस रुसुलू, यहाँ तक कि जब नाउमीद होने लगे रसूल, कौम की तरफ से नाउमीद होने लगे कि अब ये लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। वज़न्नू अन्नहुम कद कुज़िबू, और जो रसूलों के मुखातबीन हैं उनको ये ख्याल होने लगा कि उनसे झूठ बोला गया है, यानी ये जो पैगंबर आकर कह रहे हैं ना कि देखो मेरी बात मान लो, अगर नहीं मानोगे तो अज़ाब आएगा, आसमान से पत्थर आएंगे, ज़मीन फाड़ दी जाएगी। तो लोगों ने कहा कि जी बहुत देर हो गई है और लगता है कि जैसे ये झूठ बोला जा रहा है, ऐसा कोई अजाब नहीं आएगा। जा अहम नसरुना, ऐसी सूरत हाल में हमारी मदद आ पहुँची। इस हम पहले पढ़ चुके हैं कि यहाँ तक के रसूल भी कहने लगे, वज़ुल ज़िलू हत्ता यकूल रसूल वल्लज़ीन आमनू माऊ मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। तो कहा कि फिर वो हमारी मदद आ गई। फनुज्जिया मन नशा, फिर जिसको हम चाहते हैं हम नजात देते हैं। वला युरद्दु बासुना अनिल कौमिल मुजरिमीन, और हमारे अजाब को टाला नहीं जाता मुजरिम लोगों से। लकद कान फ़ी कससहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब, तहकीक इस अहवाल में, इस सारी सरगुज़िश्त में इबरत है उन लोगों के लिए जो होशमंद हैं, जो अक़ल वाले हैं उनके लिए इबरत है। तो आम तौर पर जो किस्सा गोई की रिवायत है, जैसे कि आपको मालूम होगा कि जब अभी ये रेडियो या टीवी या थिएटर भी बाकायदा नहीं आया था तो लोगों की एंटरटेनमेंट का जो ज़रिया होता था वो ये दास्तान गोई और किस्सा गोई होती थी। रसूलुल्लाह सम के ज़माने में भी था कि लोग आते थे, चौपाल लगाते थे, किस्से सुनाते थे, तो एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा ज़रिया था। और आम तौर पे किस्सा गोई में लग्व बातें, लच्चर बातें, ऐसी बातें कि जिसके अंदर जो है वो जिस्मानियत का पहलू बहुत होता है वो बयान होता है। और एक ये किस्सा है जो बयान हुआ है, किस कदर पाकीज़ा, किस कदर जो है इसमें किरदार का जो है वो बयान हुआ है। लेकिन आम तौर पे अगर आप देखें ना तो हमारे यहाँ जिस तरीके से जो लोक दास्तानें होती हैं, जिस तरह हीर रांझा है और सस्सी पुन्नू है, तो हमारे यहाँ भी जैसे यूसुफ़ जुलेखा को एक लव स्टोरी के तौर पे बयान किया जाता है, और गांव वाँव में तो बाज़ वक़्त महीनों उसका बयान होता है और उसमें अजीब अजीब रंग डाल के आखिर में उनका निकाह भी कराया जाता है, उसके बाद शादियाँ भी होती हैं। जाहिर लव स्टोरी है तो उसका कोई क्लाइमेक्स भी तो आना है ना, तो ये सारी बातें यहाँ वहाँ से लोगों ने दाखिल कर ली हैं। कुरान मजीद का बयान उतना है जितना यहाँ बयान हो गया। मा कान हदीसन युफ्तरा, ये कोई बनाई हुई घड़ी हुई बात नहीं है। वलाकिन तस्दीक अल्लज़ी बैना यदै, लेकिन ये तो तस्दीक करने वाली है उसकी जो उसके सामने है, जो पहली किताबें हैं उसकी तस्दीक करने वाली है। वह तफसील कुल्ली शै, और हर चीज़ की तफसील है इसमें। वह हुदं व रहमतन लिकौमी युमिनून, और ये हिदायत है और रहमत है उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। सूरत अर्रअद मक्किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम रा, तिल्क आयातुल किताब। ये सूरह रात है, मक्की सूरत है। इसमें भी ख़ास तौर पर जो अक्ल व फितरत में अल्लाह ताला की तौहीद के दलाइल हैं, खारिज में जो दलाइल हैं उनका बयान है। अलिफ लाम मीम रा, तिल्क आयातुल किताब, ये आयतें हैं किताब की। और हम देखते हैं कि कुरान मजीद वो वाहिद इल्हामी किताब है, जितनी किताबें हमारे पास मुयस्सर हैं, जिसका यानी अपना अपने बारे में बयान बहुत ज़्यादा है, जो बार बार अपना जिक्र करता है, यानी अपने आप को बहुत रेफ़र करता है, कहता है ये किताब है, ये किताब हकीम है। बाकी आप बाइबल पढ़ जाइए, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, उसमें आपको इस तरह का अंदाज़ नहीं मिलेगा कि बार बार ये दावा किया गया हो कि ये किताब है, ये किताब हकीम है, ये जिक्र है, ये वाज़ है, ये नसीहत है। वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक, और जो ए नबी आपकी तरफ उतारा गया है आपके रब की तरफ से, वो हक है। वलाकिन अक्सर नास ला युमिनून, लेकिन लोगों की अक्सरियत ईमान नहीं लाती। अल्लाहुल्लज़ी रफ़ा समावाति बिग़ैर आमदिन तरौनहा, अल्लाह ही है जिसने आसमानों को बुलंद किया है बग़ैर सुतूनों के, जिसको तुम देखते हो, यानी ऐसी छत है कि कोई पिलर्स नहीं है, ऐसी छत अल्लाह ने तुम पर जो है वो तानी है। वसख़्खर शम्सा वल क़मरा तस्तवा अल अर्श, फिर वो मुस्तवी हुआ, फिर वो कायम हुआ अर्श पर, कायनात को बनाया, उससे गैर मुतालिक नहीं हो गया, यानी कोई एबसेंट गॉड नहीं है बल्कि मुतसर्रिफ़ है। मौलाना इस्लाही साहब आम तौर पर बयान किया करते थे कि अल्लाह ताला जो है वो कोई मियाँ जी नहीं है। मियाँ जी एक करेक्टर होते थे ना, एक बुज़ुर्ग हैं घर में, एक तरफ पड़े हुए हैं, उनके पास एक छोटा भी है, वो बार बार लोगों को घुरकियाँ दे रहे हैं, कुछ डांट पीट भी रहे हैं, लेकिन कर वर कुछ नहीं सकते, बस वो लोगों को धमकियाँ वमकियाँ दे के फारिग हो जाते हैं, बिल्कुल उज़्वे मुअत्तल की तरह पड़े हुए हैं। तो वो कहा करते थे कि अल्लाह ताला जो है वो मियाँ जी नहीं है, उन्होंने इस कायनात को बनाया है, चला भी रहे हैं, और अगर कोई लोग सरकशी करते हैं तो अल्लाह का अज़ाब भी आता है। वसख़्खर शम्स वल क़मर, और उसी ने मुसख़्खर किया है सूरज और चाँद को, अपने अपने काम पे लगाया हुआ है। कुल्लू यजरी ली अजली मुसम्मा, हर एक चलता है एक वक्त मुकर्रर पर। ये कुरान मजीद में बार बार आता है कि अल्लाह ताला ने इस सूरज को, चाँद को, आसमान ज़मीन को मुसख़्खर कर दिया है, तुम्हारे काम पे लगा दिया है। हमारे यहाँ जैसे ख़ास तौर पर जो फ्रांसिस बेकन वगैरह के बाद ये तसव्वुर बहुत पैदा हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि हम इस कायनात को मुसख़्खर करें और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जाएं और फ़ज़ा में भी जाएं और मरीख पर भी पहुँचें, इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। इस बात से मतलब मुझे कुरान मजीद पूरा पढ़ के कहीं ये हुक्म नहीं मैंने पाया कि भाई आसमान ज़मीन को मुसख़्खर करो या इस कायनात को मुसख़्खर करो, ये अमर कहीं नहीं है। ये तो बयान है हकीकत का कि भाई सूरज और चाँद और आसमान और ज़मीन को मुसख़्खर कर दिया है तकवीनी तौर पर। तो ये जो तस्खीर कायनात की पूरी थेरी है ये खाना साज है, ख़ुद बनाई हुई। युदब्बिरुल अम्र, अल्लाह ताला जो है तदबीर अमर करता है। युफस्सिलुल आयात लअल्लकुम बिलिकाए रब्बिकुम तूकिनून, वो अपनी आयात को खोल कर बयान करता है शायद कि तुम अपने रब से मुलाकात पर यकीन करो। वहुवल्लज़ी मद्दल, और आप देखिए आसमान ज़मीन को देखना, कुरान मजीद हर जगह उसका क्या मफाद बताता है। क्या ये बताता है कि इस कायनात के मैकेनिक्स को दरियाफ्त करो, वो तुमने करना ही है, वो कोई बुरी बात नहीं है, तुम्हें अल्लाह ने अकल दिया तुम ये सब काम करोगे। कुरान मजीद तो आसमान ज़मीन चांद सितारों का जिक्र करता है कि तुम उसमें से अल्लाह की मार्फत कशीद करो, अल्लाह तक पहुँचो, अल्लाह की समझो कि अल्लाह की निशानियाँ हैं, और आख़रत का यकीन करो। वहुवल्लज़ी मद्दल अर्ज़ व जअल फ़ीहा रवासिया व अनहारा, और वही है जिसने ज़मीन को फैलाया और उसने उसमें रखे तुम्हारे लिए बोझ यानी पहाड़, व अनहारा और उसमें नदियाँ निकालीं, व मिन कुल्ल समरात जअल फ़ीहा ज़ौजैन इस्नैन, और उसने हर तरह के मेवे इसमें रखे जो दो दो तरह के हैं, जोड़े जोड़े हैं। ज़ाहिरी बात है कि जो नबातात हैं उसके अंदर भी मेल फीमेल का तसव्वुर है, जोड़े हैं। युग्शिल लैलन नहार, वो ढांपता है रात को दिन पर रात को। इन नफ़ी ज़ालिकल आयात लिकौमी यतफक्करून, बेशक इसमें निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो कि ध्यान करते हैं। वफिल अर्ज़ क़िताउन मुतजाविरातुन, और ज़मीन में खेत हैं और पैचेस हैं खेतों के साथ साथ जुड़े हुए मुख्तलिफ, यानी एक ज़मीन है यहाँ जो है वो गंदम उगी हुई है, यहाँ कोई और फसल है, यहाँ कोई और फसल है, और कहीं पर कोई जो है फल है, कहीं पर कोई और फल है। व जन्नातुम मिन आनाबिन, اور باغات ہیں انگوروں کے، و زرع اور کھیتیاں ہیں، و نخیل اور کھجوریں ہیں، سنوان وغیر سنوان، اور یہ تمام جو درخت ہیں کچھ ایسے ہیں کہ جو جن کی جڑیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، کچھ الگ الگ ہیں، یعنی کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں، درخت ایسے ہوتے ہیں کہ سیدھا ان کا تنا اوپر جاتا ہے، اور کچھ جو ہے وہ نکلتے ہیں تو کئی شاخیں ہو جاتے ہیں، کئی اس میں سے جو ہے وہ تنے نکلتے ہیں. اب یہاں بہت خوبصورت جملہ ہے، یسقا بما ان واحد، ان سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے. یہ کتنی بڑی اللہ کی جو ہے آپ سمجھ لیجئے قدرت ہے کہ ایک ہی پانی ہے، ایک ہی زمین ہے، اور اس میں بیج مختلف ڈالے جاتے ہیں، اس پانی سے اللہ تعالیٰ مختلف طرح کی سبزیاں اور پھل اور درخت نکال لیتے ہیں. کتنی غیر معمولی بات. اور پھر یہ جملہ اور بہت گہرا بھی ہے کہ یسقا بما ان واحد، اس طرح انسان ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف فیکلٹیز رکھی ہیں، انسان میں ایک ارادہ بھی ہے، انسان میں ایک طبیعت بھی ہے، انسان میں ایک جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے ذہن بھی ہے، شعور بھی ہے، لیکن یہ ساری کی ساری سیراب کہاں سے ہوتی ہیں؟ یہ ساری کی ساری اللہ کے کلام سے سیراب ہوتی ہیں. تو یسقا بما ان واحد، اور اتنے مختلف انسان ہیں، اتنے ذہنیتوں کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، اتنے مختلف فیلڈس کے لوگ ہیں، لیکن اگر وہ معرفت کی خوراک لینا چاہیں تو اللہ کے کلام میں اتنی جان ہے کہ وہ ان سب کو سیراب کر سکتا ہے. ونفضل بعضھا علی بعض فی الاکل، اور ہم بڑھا دیتے ہیں بعض میووں کو بعض میووں پر، یعنی ان کے ذائقے کو بڑھا دیتے ہیں، آگے پیچھے کر دیتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اگر آپ کو تعجب ہے تو تعجب تو ان لوگوں کی اس بات پر ہونا چاہیے کہ وہ کہتے تھے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے مرنے کے بعد تو کیا ہمیں دوبارہ جی اٹھنا ہوگا. یعنی تعجب اس پر نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی جی اٹھنا ہے، تعجب تو اس کے انکار پر ہونا چاہیے. اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا. واولئک الاغلال فی اعناقہم، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی گردنوں میں توک ہوں گے. واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور یہی لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. ویستعجلونک بالسیئۃ قبل الحسنہ، اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے برائی کو نیکی سے پہلے. ابھی اللہ نے ان کو نوازا ہے، ان پر پیغمبر بھیجے ہیں، وہی نازل کی ہے، لیکن یہ بار بار کہتے ہیں عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ. وقت خلط من قبلہم المصولات، اور اس سے پہلے بہت سے گزر چکے ہیں ان پہ عذاب، بہت سی پریسیڈنس پہلے موجود ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور بے شک آپ کا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود ان پر بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، لیکن آپ کا رب بے شک عذاب میں بھی بہت سخت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ڈھیل بھی دیتے ہیں، رسی دراز بھی کرتے ہیں، لیکن جب پکڑتے ہیں تو پکڑ بھی بہت سخت ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، اور یہ کہتے ہیں کافر لوگ کیوں نہیں اتاری جاتی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے. اِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ آپ جو ہیں وہ تو خبردار کرنے والے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم کے لیے کوئی ہادی ہوتا ہے، کوئی رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیر الارحام وما تزداد، اللہ خوب جانتا ہے جو ہر مادہ اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، جو بھی حمل ہوتا ہے، اور جو سکڑتے ہیں پیٹ اور بڑھتے ہیں، گھٹتے بڑھتے ہیں پیٹ، جس طرح حمل جو ہے اس کی تاریخیں آگے جاتی ہیں. وکل شعین اندہ بمقدار، اور ہر چیز اللہ کے ہاں ایک اندازے پر ہے، ہر چیز ماپ تول کر ہے، کوئی چیز بھی جو ہے وہ ہیپ ہیزرڈ نہیں ہے. عالم الغیب و شہادت الکبیر المتعال، وہ جاننے والا ہے کھلے کا اور چھپے کا، اور بہت بڑا ہے اور بہت بلند ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، برابر ہے تم پر، تم میں سے کوئی بات ہلکے کوئی کہے، چھپا کر کہے، یا اونچی آواز میں کہے. ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار، اور جو کوئی رات میں چھپ رہا ہے، چھپ کے کوئی عمل کر رہا ہے، یا دن دہاڑے گلیوں میں چل پھر کے کوئی کام کرتا ہے، چاہے چھپا کر کرو، چاہے ظاہر کر کے کرو، چاہے رات کی تاریکی میں کرو، چاہے دن کی روشنی میں کرو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے پہرے دینے والے، ایک کے بعد آنے والے. معقبہ کہتے ہیں جو ایک کے بعد ایک آتے ہیں، فرشتے جو ہے ان کی جو ہے وہ باریاں لگتی ہیں، اور دن کے فرشتے آتے ہیں، شام کے فرشتے آتے ہیں، اور فجر اور عصر میں گویا وہ مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی دن اور رات کے فرشتے فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں. تو کہا کہ اس کے پہرے دار ہیں جو آگے بھی ہیں ان کے اور پیچھے بھی ہیں. یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ کے حکم سے ان کی حفاظت کرتے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا کسی قوم کو यहाँ तक कि वो बदल ले जो कुछ उसके जियो में है। यानी इस तरह मैंने पहले भी यर्ज़ किया था कि इसका सही मतलब ये है कि अल्लाह ताला जो है अगर किसी कुछ लोगों को नवाजता है, उनको नेमत देता है, रहमत देता है, तो जब तक वो बातनी तौर पर पाकीज़ा रहते हैं, उन चीज़ों का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला उस नेमत को वापस नहीं लेते। लेकिन जब वो अपने आप को करप्ट कर लें, अपने आप को ख़राब कर लें, तो अल्लाह ताला फिर उस नेमत को छीन लेते हैं। या वैसे अगर हम आम तौर पे जो मफहूम बयान होता है कि जब तक लोग अपने अंदर की कैफियत को नहीं बदलेंगे, अल्लाह ताला भी उनकी हालत को नहीं बदलेंगे। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि हम इस्लामिक स्टेट की बात करते हैं खारिज में, रियासत के मानों में स्टेट, तो वो कहते हैं कि इस्लामिक स्टेट नहीं कायम हो सकती जब तक कि एक मोतदबे तादाद के लोग हैं जो एक इस्लामिक स्टेट ना रखते हों, जिनका हाल इस्लामी ना हो, ठीक है, जिनके बातिन में जो है वो इस्लाम की शमा अपनी पूरी आबोताब से जो है जगमगा ना रही हो। वइज़ा अराद अल्लाह बिकौमिन सूअन फला मरद्दला, और जब अल्लाह ताला किसी कौम के बारे में अज़ाब का इरादा करता है, किसी आफत का इरादा करता है, तो फिर वो नहीं फिरती, उसको कोई फेरने वाला नहीं है। वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल, और इन लोगों के लिए अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं है। हुवल्लज़ी युरीकुमुल बर्क खौफन व तमा, और वही है जो तुमको दिखाता है बिजली खौफ के साथ भी और उम्मीद के साथ भी। यानी जब बिजली कड़कती है तो डर भी लगता है कि भाई किसी पर आना पड़े, और एक उम्मीद भी होती है कि इसके बाद जो है बारिश होगी और खेत सैराब होंगे। वयुनशी उस सहाब सिकाल, और वही है जो उठा के लेके आता है भारी बादल को। वयुसब भी हो रात अब हमदही, और तस्बीह करती है ये जो गरज चमक है बिजली है अल्लाह की हमद के साथ। वल मलाइकतु मिन खीफती, और फरिश्ते भी जो है तस्बीह करते हैं तहमीद के साथ अल्लाह के डर से। वयुसिलु सवाइका, और भेजता है अल्लाह कड़क वाली बिजलियाँ। फयोसीबु बिहा मई यशाउ वहम युजादिलू नफ़ी फिल्ला, और फिर जिस पर चाहता है उनको गिरा देता है, और ये लोग अल्लाह के मामले में झगड़ते हैं। वह हुआ शदीदुल मिहाल, और उसकी आन उसकी पकड़ जो है वो बहुत सख्त है। यानी एक इसी को देख लो, कुरान मजीद कहता है कि वमा यालमु जुनूद रब्बी का इल्ला हो, तुम्हारे रब के लश्करों को कोई नहीं जानता मगर उसके। अल्लाह को जब किसी कौम पर अज़ाब लाना होता है तो कोई थोड़ी प्लानिंग थोड़ी करनी है, कोई फ़ौजें ज़रूर लेकर आनी है, ये तो नहीं करना है कोई तोपें फिट करनी है, बस इस कायनात में जो अल्लाह ने कुव्वतें रख दी हैं बस उनको छोड़ देता है। पानी है ये बरसना शुरू हो जाए, अल्लाह का लश्कर है ये, अगर 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे बरसता रहे और 2 दिन बरसता रहे तो जान के लाले पड़ जाते हैं। तो यही हवाएँ हैं चलती हैं ज़िंदगी लाती हैं, इन्हीं हवाओं की बाग अल्लाह छोड़ दें तो ये तबाही लेकर आ जाती हैं। तो कहा कि यही चीज़ें हैं, अल्लाह ताला ने अज़ाब का जो सामान है वो भी तुम्हारे इर्द गिर्द रखा हुआ है। और कुरान मजीद कहता है कि वह इमिन शईन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिल्ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, कायनात की कोई चीज़ नहीं है मगर ये कि अल्लाह की तस्बीह और तहमीद कर रही है लेकिन तुम्हें उसका शऊर नहीं है। लहू दावतुल हक़, उसी का पुकारना सच्चा है, या उसकी तरफ से जो दावत है वही हकीकी है। वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिही ला यस्तजीबून लहुम बिशै, और वो लोग जिनको ये पुकारते हैं अल्लाह के सिवा वो कुछ भी उनके काम नहीं आते। इल्ला कबासिती कफ़ई ही इलल माइल यबलुगा फ़ाहू अमा हुआ बिबालिगी, जैसे कोई आदमी कहीं पानी है उसकी तरफ अपने दोनों हाथ फैलाकर चाहे कि वो पानी खुद उसके मुंह में आ जाए। यानी कहीं पानी पड़ा हुआ है और वो हाथ फैला रहा है कि पानी उड़ के उसके मुंह में आ जाए, तो कहा कि ये भी एक शराब के पीछे भाग रहे हैं। वमा हुआ बिबालिगी, और ज़ाहिर बात है इस तरह पानी कभी भी उन तक नहीं पहुँचता। वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फ़ी ज़लाल, और ये जो काफिरों का पुकारना है ये सब गुमराही है, सब अकारत जाएगा। वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस समावाति वल अर्दि तौअन व करहा, और जो कुछ आसमानों में है और ज़मीन में है खाही ना खाही अल्लाह ही को सजदा कर रही है। वज़िलालुहुम बिलगुदुव्वि वल आसाल, और उनकी परछाइयाँ उनके साये भी सुबह शाम अल्लाह को सजदा कर रहे हैं। ये आयत सजदा सजदा कर लीजिए। बिस्मिल्लाहि वलहु आखिरा, यानी इस कायनात की हर चीज़ अल्लाह के आगे सिरनगू है, और हर चीज़ यानी चीज़ें भी और इंसान भी, यानी फ़िरौन भी सिरनगू है, फ़िरौन भी ज़ाहिरी बात है अपने जीने मरने में अल्लाह का मोहताज है। तो तकवीनी तौर पर हर चीज़ अल्लाह के आगे झुकी हुई है। इसको कहा जाता है कि ये इबादत बिल इजबार है, इबादत बिल इजबार तो सबको करनी है, लेकिन अल्लाह ताला इंसानों और जिन्नात से चाहते हैं कि वो इबादत बिल इख्तियार भी करें, यानी अपने इख्तियार से भी जो है वो अल्लाह की बंदगी करें। कुल मतलब समावाती वल अर्ज़, ए नबी इनसे पूछिए आसमानों और ज़मीन का रब कौन है। कुल इल्ला, ए नबी आप खुद फरमा दीजिए अल्लाह। कुल अफत तखस्तुम मिन दूनिही औलिया ला यमलिकून लि अनफुसिहिम नफ़अ वला ज़र्रा, तो ए नबी इनसे पूछिए कि तुम अल्लाह के सिवा ऐसे हिमायती इख्तियार करते हो बनाते हो जो तुम्हारे बारे में کسی فائدے یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. قل هل یستوی الاعمى والبصیر, اے نبی فرما دیجئے کیا اندھا اور جو ہے دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوی ظلمات والنور, یا کہیں برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور نور, یعنی توحید اور شرک برابر ہو سکتے ہیں, کفر اور اسلام برابر ہو سکتے ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکا خلقوا کخلق ہی فتشابہ الخلق علیہم, یا انہوں نے ٹھہرا لی ہیں اللہ کے شریک کہ انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے جیسا کہ اللہ کی تخلیق ہے اور ان پر مشتبہ ہو گئی ہے اللہ کی تخلیق. یعنی یا تو یہ ہونا کہ بھئی ٹھیک ہے کچھ چیزیں اللہ نے بنائیں کچھ چیزیں کسی اور ہستی نے بنائیں, تو لوگوں کے اشتباہ پیدا ہو گیا کہ معلوم نہیں فلاں چیز اللہ نے بنائی ہے یا شریکوں نے بنائی ہے. قل اللہ خالق کل شیء, اے نبی فرما دیجیے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے, وہو الواحد القہار, اور وہ اکیلا ہے اور زبردست ہے. انزل من السماء ماء, اسی نے اتارا آسمان سے پانی, فسالت اودیتم بقدرها, تو پھر کیا ہوا کہ زمین کے نالے پانی کو لے کے چلنے لگے, بقدرها, اپنی اپنی وسعت کے مطابق زمین سے بارش برسی, اس میں مختلف ندی نالے جو ہے پانی کو لے کر چل پڑے. فاحتمل السیل زبد الرابیہ, تو کیا ہوا کہ وہ جو پانی تھا جو نالا تھا وہ اوپر جو ہے وہ پھولا ہوا جھاگ لے آیا. ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلو, اور جو تم دھونکتے ہو آگ میں تپاتے ہو زیورات کے لیے یا اور سامان جو ہے مختلف میٹلز کو تم تپاتے ہو آگ پر, اس پر بھی ایسی ہی جھاگ آ جاتی ہے. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے حق اور باطل کی. یعنی پانی چلتا ہے پانی کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے, اسی طریقے سے جب میٹلز کو جو ہے پیوریفائی کرنے کے لیے ان کو جو ہے وہ اس میں ڈالا جاتا ہے بھٹی میں, تو اس پر بھی جھاگ سی آ جاتی ہے. وہ ایک ورم سا ہوتا ہے, اس کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی, اصل میں پانی نیچے ہے اوپر کچھ ورم آ گیا. فاما الزبد فیذهب جفاء, سو وہ جو جھاگ ہے وہ تو سوکھ کر جاتا رہتا ہے. واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض, اور جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ باقی رہتی ہے زمین میں. کذالک یضرب اللہ الامثال, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے. یعنی یہ کیا ہے کہ جو اصل حق ہوتا ہے خیر ہوتا ہے وہ حقیقی ہوتا ہے, وہ دیر پا ہوتا ہے, وہ ٹھہرتا ہے زمین میں, اور جو باطل ہوتا ہے بظاہر دیکھنے میں اس میں بڑی چمک دمک ہوتی ہے, بڑا پھلاؤ ہوتا ہے, بڑا ورم ہوتا ہے, لیکن اس کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی. للذین استجابوا لربهم الحسنى, بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی باتیں مانی ان کا حکم مانا ان کے لیے بھلائی ہے. والذین لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به, اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے احکامات نہ مانے وہ یہ چاہیں گے کہ ان کے لیے جو کچھ بھی زمین بھر ہو وہ ہو جائے اور اتنا ہی اور ہو جائے, اور وہ یہ سب دیکھ کر اپنے آپ کو بچا لیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا مشرک ہوگا, وہ کہے گا کہ اے اللہ تو زمین بھر مجھ سے سونا لے لے مجھے معاف کر دے, تو کہا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں تم سے اس سے بہت کم مطالبہ کیا تھا, بہت تھوڑے مال کا مطالبہ کیا تھا اور اقرار کا اور توحید کا مطالبہ کیا تھا. اولئک لہم سوء الحساب, یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے. ومأواہم جہنم, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد, اور وہ بہت ہی بری آرام کی جگہ ہے. فمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا اعمى, تو بھلا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ اتارا گیا آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وہ حق ہے, کمن ہوا اعمى, یہ برابر ہو سکتا ہے اس کے کہ جو اندھا ہے؟ یعنی کیسے ممکن ہے کہ ایک وہ آدمی ہے جو پیغمبر کو پہچان رہا ہے, قرآن مجید کے سامنے سر جھکا رہا ہے اور حق کو قبول کر رہا ہے, اور ایک وہ آدمی ہے جو بالکل ہی اندھا بنا ہوا ہے؟ یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب, بے شک سمجھتے وہی ہیں جو عقل والے ہیں. یعنی کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں بھی یہ برابر نہیں ہو سکتے, آخرت میں بھی یہ برابر نہیں ہو سکتے. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون, کیا آخرت میں ہم اپنے فرما برداروں کو اور اپنے باغیوں کو برابر کر دیں گے؟ کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ الذین, ابھی اولو الالباب کون ہے, ہوش مند کون ہے, اہل دانش کون ہے؟ الذین یوفون بعہد اللہ, وہ لوگ کہ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں, عہد الست جو کیا اس کو بھی پورا کرتے ہیں, پیغمبروں کے ذریعے جو شریعت ملی ہے اس پر بھی پورے اترتے ہیں. ولا ينقضون المیثاق, اور اللہ سے کیے ہوئے پختہ عہد کو توڑتے نہیں. والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ملاتے ہیں جس کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ملایا جائے, یعنی صلہ رحمی کرتے ہیں, رشتوں کو جوڑتے ہیں. ویخشون ربهم, اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں. ویخافون سوء الحساب, اور اندیشہ ناک رہتے ہیں برے حساب سے. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم, और ये वो लोग हैं जो अपने रब की रज़ा जुई के लिए जो है सब्र करते हैं, साबित कदम रहते हैं। यानी सब्र का मतलब है झेलना, बर्दाश्त करना, साबित कदम रहना। लेकिन शरी मानों में सब्र वही होता है जो अल्लाह के लिए किया जाए। बहुत से लोग होते हैं उन पर बहुत बड़े बड़े सदमे आते हैं लेकिन वो टूटते नहीं, बहुत मजबूती से खड़े रहते हैं और वो कहते हैं कि भाई हम जो हैं बहुत मजबूत लोग हैं और हम लोगों के सामने झुकना नहीं चाहते और अपने आप की अपनी मजबूती और कॉम्पैक्टनेस का इजहार करते हैं। लेकिन ये सब्र नहीं है। सब्र वो होता है जो अल्लाह की रज़ा जुई के लिए किया जाए, जो आखरत में अल्लाह से अजर लेने के लिए किया जाए। वाकामसलात, और उन्होंने नमाज कायम की। व अनफकु मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, और ख़र्च किया उसमें से जो हमने उन्हें रिस्क दिया था, खुले में भी और छुपे में भी, यानी एलानिया भी दिया और छुपा कर भी दिया। व यदऊन बिल हसनति सैया, और ये वो लोग हैं जो दूर करते हैं बुराई को नेकी से। यानी ये टिट फॉर टैट का मामला नहीं करते कि भाई लोग हमारे साथ बुरे हैं तो हम भी बुरे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तकूनु इम्माअतन, इम्मा मत बनो। इम्मा का मतलब ये है कि भाई जैसे लोग हमारे साथ करेंगे हम भी वैसा ही करेंगे। और तुम ये ना कहो कि अगर लोग हमारे साथ अच्छा करेंगे तो हम भी उनके साथ अच्छा करेंगे और अगर हमारे साथ बुरा करेंगे तो हम भी उन पर ज़्यादती करेंगे। इनका वलाकिन वत्तिनु अनफुसकुम, अपने अंदर जमाव पैदा करो। इन अहसनन नास अंतोसिनु, अगर तो लोग तुम्हारे साथ अच्छा करें तो तुम अच्छा करो। व इन असाऊ फला तज़लिमु, और अगर तुमसे वो बुरा भी करें तब भी उनके साथ बुरा सलूक न करना, ज़्यादती न करना। तो ये एक बरतर अखलाक है जो आगे हामिम सजदा में कुरान मजीद कहेगा कि इदफा बिल्लती ही अहसन फ़ैज़ल लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलीयुन हमीम। बुराई को अच्छाई से दूर करो, तुम देखोगे कि वो जो तुम्हारा खुला दुश्मन है वो गर्म जोश दोस्त बन जाएगा, तुम्हारा रफ़ीक बन जाएगा। उलाई का लहुम उकबद्दार, ये वो लोग हैं जिनके लिए आखरत का घर है। जन्नात आदनी यदखुलूनहा, हम एक जो है वो रिहायशी बागात हैं जिसमें वो दाखिल होंगे। वमन सलहा मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियातिहिम, और उस जन्नत में दाखिल होंगे जो उनके बाप दादा और उनकी बीवियों और उनकी औलाद में नेक होंगे, वो दाखिल होंगे। यानी कुरान मजीद ये कहता है कि आगे एक जगह आता है ना कि वल्लज़ीन आमनु व तबातहुम ज़ुर्रियतहुम बी ईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। जो लोग ईमान लेकर आएंगे और उनकी ज़ुर्रियत भी इत्तबा करेगी, उनका ईमान लेकर आएगी, तो हम उनको उनसे मिला देंगे और उनके अजर में कोई कमी नहीं करेंगे। यानी चाहे औलाद है, चाहे वालदैन है, चाहे शौहर या बीवी है, दोनों जन्नत में जाना दोनों ग्रोहों ने क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन एक ग्रोह बहुत नीचे मरतबे पर है, एक ऊँचे मरतबे पर है। तो कहा कि अल्लाह ताला ये करेंगे कि जो नीचे वाले लोग हैं, चाहे वो औलाद है, चाहे वालदैन है, चाहे शौहर है, चाहे बीवी है, उसको अपग्रेड कर देंगे, ऊपर वाले मरतबे के साथ मिला देंगे। तो यहाँ पर भी ये कहा कि जो उनमें साले होंगे, ये शर्त लगा दी कि बुनियादी सालहियत शर्त है, ईमान और अमल साले ज़रूरी है, बाकी कोताहियाँ अल्लाह माफ़ करने वाला है। वल मलाइकत यदखुलून अलैहिम मिन कुल्ली बाब, और फरिश्ते उन पर दाखिल होंगे हर दरवाजे से। क्या कहेंगे? सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, तुम पर सलामती हो तुम्हारी साबित कदमी की बुनियाद पर। कुरान मजीद में कई मकामात ऐसे हैं कि जहाँ जन्नत में दाखिले का जो एक वाहिद सबब बनने वाला अमल है वो बताया गया है कि सब्र है। सब्र पूरी ज़िंदगी पर मुहित है, यानी अल्लाह ताला की नेकियां करने के लिए सब्र करना पड़ता है, अल्लाह की बंदगी करने के लिए सब्र करना पड़ता है, अल्लाह की हराम से उसके गुनाहों से बचने के लिए सब्र करना पड़ता है, और मुश्किल हालात में भी सब्र करना पड़ता है। इस तरह सूरह फुरकान में आएगा कि उलाइका युजज़ौनल गुरफत बिमा सबरु, ये वो लोग हैं कि जिनको दिए जाएंगे जन्नत के बाला खाने उनके सब्र की बुनियाद। या जिस तरह सूरह इंसान में फरमाया, व जज़ाहुम बिमा सबरु जन्नतं व हरीरा, हम उनके सब्र के बदले में रहने के लिए बागात देंगे और पहनने के लिए रेशम देंगे। यहाँ पर भी फरमाया कि सलामुन अलैकुम बिमा सबर तुम, यानी गोया सब्र पूरी ज़िंदगी का उनवान है एक बंदे मोमिन की। फ़निअमा उकबद्दार, तो क्या ही अच्छा घर है जो आखरत का तुम्हें मिला है। वल्लज़ी, इसके बरक्स, वल्लज़ीन यनक़ुज़ून अहदल्लाहि मिन बादी मीसाकी, वो लोग के जो अल्लाह के अहद को उसको पुख्ता मजबूत करने के बाद तोड़ते हैं। व यक़्तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसल, और कता करते हैं उस चीज़ को जिसको अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उसको जोड़ा जाए। व युफ़सिदून फ़िल अर्द, और ज़मीन में फसाद मचाते हैं। उलाइका लहुमुल लानत व लहुम सूउद्दार, ये वो लोग हैं जिनके लिए अल्लाह की रहमत से महरूमी है, लानत है, और उनके लिए बहुत बुरा घर है। यानी दुनिया की ज़िंदगी पर बस राज़ी हो गए हैं और इसी में पड़े हुए हैं। अल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है रिस्क को कुशादा कर देता है, जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। व फरीहू बिल हयात दुनिया, और ये लोग दुनिया की ज़िंदगी पर फरीफ्ता हैं। पहले फरमाया कि अल्लाह ताला कभी रिस्क कुशादा करता है, कभी तंग कर देता है। सैयदना अली फरमाया करते थे कि अद्दहरु यौमान, यौमुन लका व यौमुन अलैका। दुनिया तो दो दिनों पर मुश्तमिल है, कोई दिन तुम्हारे हक में होता है, कोई दिन तुम्हारे ख़िलाफ़ होता है। जो दिन तुम्हारे हक में है अल्लाह का शुक्र करो, जो दिन तुम्हारे ख़िलाफ़ है तो सब्र करो। तो कहा कि अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है रिस्क कुशादा करता है, जिसके लिए चाहता है तंग करता है। वफ़रिहू बिल हयात दुनिया, लेकिन इन लोगों का मामला यह है कि दुनिया ही की ज़ुल्फ़ गिरागीर के असीर हो गए हैं और फरीफ्ता हो गए हैं। वमल हयात दुनिया फ़िल आख़िरत इल्ला मता, जबकि दुनिया की ज़िंदगी नहीं है आख़िरत के मुकाबले में मगर हकीर मता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरह तरह से ये बात लोगों पर वाज़े की। एक मरतबा आप तशरीफ़ ले जा रहे थे तो एक मरी हुई बकरी पड़ी हुई थी, बिल्कुल ही छोटे साइज़ की बकरी, मरी हुई मुर्दार, उसके कान भी कटे हुए थे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम में से कौन है जो इसको एक दिरहम में ले। तो साहबा ने अर्ज़ की, अल्लाह के नबी अगर ये ज़िंदा होती तब भी हम इसको एक दिरहम में ना लेते, तो बिल्कुल ऐबदार है, और ये तो अब मुर्दा है, मैता है, इसका हम क्या करेंगे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फवल्लाहि लद्दुनिया अहवनु अलल्लाहि मिन हाज़ा अलैकुम, अल्लाह की कसम दुनिया की हैसियत अल्लाह ताला के नज़दीक इससे भी कमतर है, कोई हैसियत ही नहीं, कोई मरतबा ही नहीं है। तो फरमाया कि वमल हयात दुनिया फ़िल आख़िरत इल्ला मता, और दुनिया की ज़िंदगी आख़िरत के मुकाबले में नहीं है मगर हकीर मता। बारकल्लाहु ली वलकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति वज़िक्रिल हकीम।